राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर परिवराजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्री मधेश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान रमणाचार्य वृंद की जय। श्री पुरुषोत्तम अधिक मास महामहोत्सव की जय। श्री दीपदान महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी और ग्लोरियस्ट सिमिल डिवोटीज और ग्लोरियस्ट सिमिल डिवोटीज और ग्लोरियस्ट सिमिल डिवोटीज और ग्लोरियस्ट श्री गुरु एंड गौरांबा। हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं पुरुषोत्तम अधिक मास चल रहा है, इसका बहुत अधिक महात्म्य है। जैसे इसे कहा जाता है पुरुष उत्तम अधिक महात्म्य, उसी प्रकार से इसका महात्म्य भी बहुत अधिक है। शास्त्रों में इसका बहुत अधिक महात्म्य है, है ना। तो इस महात्म्य के 7 अध्याय मैंने पढ़ के सुनाए थे पंजाबी बाग मंदिर में। तो उस कथा को मैं संक्षेप में पढ़ करके फिर जितना समय होगा उतना मैं सुनाऊंगा। 9 बजे समाप्त करना है ना, 1 घंटा है ना, 9 बजे। तो जितना समय होगा उतना मैं सुनाऊंगा। इसमें कथा ये है कि सृष्टि काल में सबसे पहली बार जब ये अधिक मास आया, कभी तो आया, सृष्टि जब प्रारंभ हुई तो सबसे पहली बार अधिक मास आया है। तो सब लोगों ने इसको जो है क्या किया, इसका तिरस्कार किया, निंदा की, मल मास कह करके, मल मास है ना, अशुद्ध है, किसी प्रकार के भी शुभ कर्मों से वर्जित है, इसमें कोई संक्रांति नहीं होती है ना, कोई शुभ कर्म नहीं किया जा सकता है, इसका कोई स्वामी नहीं है। इस तरह से मल मास का जो इतना तिरस्कार हुआ कि वो बहुत निराश हो गया और वो वैकुंठ धाम में जाकर के भगवान विष्णु के सामने बहुत रोया। उसने कहा कि मैं तो मरना चाहता हूँ क्योंकि मेरा इतना तिरस्कार हो रहा है और सब लोगों ने जो है मुझे अपनी पंक्ति से निकाल दिया है, मैं, मेरा कोई स्थान नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा कोई स्वामी नहीं है, अब मेरे जीवन का जो है कोई लाभ नहीं है। तो भगवान विष्णु उसको सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि चलो तुम मेरे साथ गोलोक धाम चलो, वहाँ भगवान कृष्ण हैं तो वे जो है तुम्हारे कष्ट को दूर करेंगे। और भगवान विष्णु जो है इस मल मास को गोलोक धाम में ले जाते हैं, भगवान कृष्ण के धाम में ले जाते हैं। तो कृष्ण जो है उसे फिर यही कहते हैं कि अब आगे से जो है मैं ही इस महीने का स्वामी बन जाता हूँ और मैं अपनी पूरी शक्तियाँ इस महीने को देता हूँ, अपना नाम भी इसको देता हूँ। तो ये पुरुषोत्तम मास कहलाया तब से, और इसको जो है फिर सब महीनों में सबसे बढ़ करके भगवान कृष्ण ने बना दिया। तो ये संक्षेप में मैंने 7 अध्याय की कथा सुनाई है। ये जो कथा है ये सुना रहे हैं सूद गोस्वामी नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों को, जैसे श्रीमद् भागवत में है ना, तो वही सूद गोस्वामी नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। और उसी कथा के अंदर नारद जी सुन रहे हैं नारायण ऋषि से, नारायण ऋषि सुना रहे हैं किसको, नारद जी को, कहाँ पर, बद्रिकाश्रम में, है ना। तो इस तरह से जो है 3 स्थानों पर कथा चल रही है। एक तो नारायण ऋषि जो है नारद जी को सुनाते हैं और सूद गोस्वामी सुना रहे हैं नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों को, और तीसरा और किसका है, हाँ भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज और पांडवों को द्रौपदी को सुना रहे हैं काम्यक वन में, क्योंकि ये समय चल रहा है पांडवों के वनवास का, 12 साल का वनवास चल रहा है, उसी में ही वो सुना रहे हैं। तो 3 संवाद एक साथ चलते हैं, है ना। तो आप सुनिए बड़े ध्यान से। श्रोत जी कहने लगे कि हे मुनियो, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण जी के संवाद को सुनकर संतुष्ट हृदय नारद जी ने श्री नारायण जी से फिर इस प्रकार प्रश्न किया। नारायण भगवान सुना रहे हैं, है ना। तो कृष्ण और विष्णु का संवाद हुआ, है ना। तो इसको सुन करके नारद जी ने श्री नारायण जैसे फिर इस प्रकार प्रश्न किया। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब भगवान विष्णु वैकुंठ चले गए तब क्या हुआ, सो मुझे बताइए। गोलोक धाम में इस मल मास को भगवान कृष्ण ने बदल दिया, नाम बदल दिया, अब ये मलमास नहीं, अब क्या है ये पुरुषोत्तम मास है। और भगवान विष्णु कृष्ण की आज्ञा लेकर के वैकुंठ चले गए। तो नारद जी पूछ रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ, सो मुझे बताइए। आदि पुरुष श्री कृष्ण और विष्णु का जो आख्यान है ये समस्त जनता का कल्याणकारी है। नारद कृतवान प्रश्नम पुनरेव तपोधनाम विष्णु श्री कृष्ण संवादम श्रुत्वा संतुष्ट मानसः वैकुंठम विधवती रुक्मणी से किम जातम तदनुवद प्रभो मे वृत्तांतम हरे सुत कृष्ण योश्चा सर्वे सामहित कर्मादि पुंसो। इस प्रकार प्रश्न सुनकर हर्षित होकर भगवान नारायण विष्णु को आनंद देने वाले इस महान कथा का वर्णन करने लगे। सुने ध्यान से नारद जी से, कौन सुना रहे हैं नारद जी को? नारायण, ऋषि नारायण सुना रहे हैं। श्री नारायण ने कहा, हे नारद, तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर वैकुंठ में चले गए और वहां पहुंचकर अधिमास को अपने पास ही निवास स्थान दे दिया। इस महीने को वैकुंठ में ही निवास दिया। वह आवास प्राप्त कर अधिमास की प्रसन्नता की सीमा न रही और वो 12 महीनों का अधिपति होकर भगवान विष्णु के साथ विहार करने लगा। उधर भगवान विष्णु 12 महीनों में मलमास को सर्वोत्तम बनाकर हृदय में बहुत संतुष्ट होकर चिंता मुक्त हो गए। द्वादशपि मासेषु मलमासं वरं प्रभु विधाय मनसा तुष्टो बभूव प्रकृति प्रियः। हे नारद, कौन कह रहे हैं? हे नारद, नारायण जी कह रहे हैं। हे नारद, इतनी कथा सुनाने के बाद भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए करुणापूर्वक अर्जुन से कहने लगे। तो ये जो नारायण ऋषि हैं, ये कथा सुना रहे हैं किसकी? कृष्ण और युधिष्ठिर पांडवों के साथ, है ना। तो श्रोत गोस्वामी सुना रहे हैं कथा नारायण और नारद जी के संवाद की, और नारायण जो है संवाद सुना रहे हैं भगवान कृष्ण का युधिष्ठिर और बाकी 5 पांडवों द्रौपदी के साथ में, है ना। समझ रहे हैं? कथा के अंदर कथा, फिर उसके अंदर कथा, है ना। तो सबसे पहले जो कथा है वो किसकी है? श्रोत जी सुना रहे हैं, श्रोत गोस्वामी सुना रहे हैं स्वर्णकादि ऋषियों को, कहाँ पर? नैमिषारण्य में। तो इस कथा के अंदर नारायण ऋषि बद्रिकाश्रम में सुना रहे हैं किसको? नारद जी को। फिर इस कथा के अंदर नारायण ऋषि सुना रहे हैं भगवान कृष्ण के संवाद 5 पांडव और द्रौपदी के साथ, कहाँ पर? काम्यक वन में, है ना। इस तरह से 3 संवाद हैं। तो हे नारद, इतनी कथा सुनाने के बाद भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए करुणापूर्वक अर्जुन से कहने लगे। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोगों ने तपोवन में आकर निरंतर कष्ट सहते सहते पुरुषोत्तम मास का अनादर कर दिया। कृष्ण क्या कह रहे हैं कि आपने पुरुषोत्तम मास का अनादर कर दिया। वृंदावन की शोभा के धाम भगवान गोलोक अधिपति का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप सब वनवासी जनों की असावधानी से उसी तरह बीत गया है। आपने कुछ विशेष कुछ किया नहीं पुरुषोत्तम मास में, है ना। तो हमें कुछ ना कुछ विशेष करना चाहिए पुरुषोत्तम मास में, जो कुछ भी करते हैं उसमें कुछ विशेष, है ना। तो अभी विशेष क्या है? पुरुषोत्तम योग का पाठ हमने किया और दीपदान किया, लेकिन डेली 1 महीने रोज करना है, कुछ भी करो लेकिन कुछ विशेष करना है, क्योंकि इसका आदर करना है इस महीने का, है ना। तो कोई व्यक्ति जो है विशेष होता है तो उसका कुछ हम विशेष आदर करते हैं। अगर सबके बराबर सीट में बना बैठा दिया तो उसका अपमान होता है ना। किसी विशेष व्यक्ति को अगर आप वही सीट दे दो जो जिसमें सब लोग बैठे हुए हैं तो आप उसमें अनादर होता है, उसका कुछ विशेष हमें करना है सम्मान। तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं 5 पांडवों और द्रौपदी से कि लगता है कि आप लोगों ने ये महीना निकल गया पुरुषोत्तम मास का, 12 महीने का वनवास था तो पुरुषोत्तम मास तो जरूर निकला ना। बारह साल में तो पुरुषोत्तम मास तो जरूर निकल गया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं आप लोगों ने असावधानी से जो है इसकी आराधना नहीं की है। वृंदावन की शोभा के धाम भगवान गोलोक अधिपति का प्रिय पुरुषोत्तम मास आप सब वनवासी लोगों की असावधानी से उसी तरह बीत गया है। वृंदावन कलानाथ है वल्लभ पुरुषोत्तम प्रमादान गतवान मासो भवताम काननो कसाम। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण आदि का भय आप लोगों को बना रहता था कि फिर न कहीं कोई दूसरा षड्यंत्र हो जाए, इससे भय और द्वेष के चक्कर में पड़े रहने के कारण पुरुषोत्तम मास के आने पर भी उसका ज्ञान नहीं रहा। दूसरे व्यास जी से प्राप्त विद्या की आराधना में तत्पर हो रणवीर और संग्राम में हलचल मचा देने वाले अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर उनके वियोग से दुखी हो आप लोगों को पुरुषोत्तम मास के आने पर भी उसका ज्ञान ना रहा। अब आप पूछें कि हम लोग क्या करें तो मैं कहूँगा, कृष्ण कहते हैं अगर आप पूछें कि हम क्या करें तो मैं कहूँगा कि भाग्य का सहारा लीजिए, जैसा होनहार होता है वैसा ही मनुष्यों को दिखलाई पड़ता है, भाग्य में जैसा फल लिखा रहता है उसको अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्यों को भाग्य के अनुसार ही सुख दुख भय निरोगता आदि भोगना पड़ता है। आप लोग भाग्यवादी हैं अतः आप लोगों को भाग्य पर ही सदा स्थिर रहना चाहिए। अब इसके अतिरिक्त आप लोगों के दुख भोगने का एक दूसरा भी कारण है जो बड़ा विलक्षण है। हे महाराज मेरे मुख से उस वृत्तांत को भी सुन लीजिए। सुनने ध्यान से भगवान कह रहे हैं एक और भी कुछ कारण है आप लोगों को जो दुख मिला है। श्री कृष्ण जी बोले ये जो सौभाग्यशालिनी पांचाल राजकुमारी द्रौपदी है ये पूर्व जन्म महर्षि मेधावी की पुत्री हुई थी। किसकी पुत्री हुई थी? कौन? द्रौपदी। पिछले जन्म में महर्षि मेधावी की पुत्री हुई, ये बहुत सुंदरी थी। हे राजन समय बीतता गया और कन्या 10 वर्ष की हो गई। वो सौंदर्य की मूर्ति थी, नेत्रों के कटाक्ष मुग्धकारी थी, वो चातुर्य गुण विशारदा हो गई। पिता की एकमात्र पुत्री होने के कारण वो पिता की बड़ी लाडली बेटी हुई। जैसी वो गुणवती थी वैसी ही शारीरिक गठन में सुंदरी थी, उसकी चतुरता के संबंध में भी क्या पूछना। मेधावी ऋषि ने उसे सदा पुत्र का प्यार देकर लालन पालन किया और कभी झिड़का नहीं, कभी नहीं डांटा। किसने? मेधावी ऋषि ने कभी नहीं डांटा, बहुत प्यार दिया। एकमात्र पुत्री थी, वो साहित्य शास्त्र कोविदा नीत शास्त्र में पारंगत हो गई। उसकी माता पहले ही तभी मर चुकी थी, पिता ने ही प्रसन्नता के साथ पालन पोषण किया। अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाली अपने सहेलियों के पुत्र और पोत्र के सुख को देखकर उसे भी वांछा हुई। वो किशोरी सदा विचरती रहती थी कि क्या ये सुख मुझे भी मिल सकता है, सद्गुण और सौभाग्य का भंडार और सुख देने वाला पति कैसे मिलेगा, और फिर सदाचारी पुत्रों का सुख कैसे प्राप्त हो। पहले मेरा मनोरथ पूरा होने वाला था पर सारा खेल भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब कौन सा कृत्य करूं, किससे ज्ञान प्राप्त करूं, किस देवता की उपासना करूं, अथवा किस ऋषि की शरण में जाऊं या किस तीर्थ का सेवन करूं। प्रतीत होता है कि मेरा भाग्य सो गया है क्योंकि कोई भी व्यक्ति मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कौन सोच रही है? हाँ, मेधावी की कन्या। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे पिता इतने पंडित होते हुए भी मेरे दुर्भाग्य से उनकी बुद्धि मारी गई है, क्योंकि विवाह की अवस्था होने पर भी उन्होंने योग्य वर को कन्यादान नहीं दिया। पुत्र सोच रही अपने मन में कि मेरे पिता भी मेरे बारे में विचार नहीं कर रहे हैं। अपने सहेलियों में मैं अध्यक्षा हूँ परंतु कुमारी होने के कारण पति के ना मिलने के दुख से पीड़ित रहती हूँ, और जैसी मेरी सखियाँ पति सुख को भोग रही वैसी मैं नहीं हूँ। मेरी सौभाग्यशालिनी माता पहले ही क्यों मर गई? इस प्रकार चिंता से व्याकुल हुई कन्या इस मनोलक रूपी महासागर के मोह रूपी जल में डूबती उतराती, शोक और मोह रूपी लहरों के थपेड़े खाती रहती थी। उधर ऋषिराज मेधावी भी पृथ्वी तल पर कन्यादान के निमित्त वर को ढूंढते फिरते थे, परंतु कन्या के सदृश योग्य वर के ना मिलने से उनके मनोरथ पर पानी फिर गया। तो कन्या सोचती, मेरे पिता सोच नहीं रहे मेरे बारे में, ये पिता सोच रहे थे तो कन्या को क्या बताएं? कन्या पिता को कुछ नहीं बता सकती, पिता कन्या को कुछ नहीं बता सकते, पिता सोच रहे हैं। इन कन्या जैसी गुणवती है, ऐसा वर मिलना चाहिए, तो वैसा वर नहीं मिल रहा है ना। अपने और अपनी कन्या के दुर्भाग्य के कारण उनका संकल्प बिखर गया, फलस्वरूप देव योग से बड़ा भारी दारुण तेज ज्वर उन्हें आ गया। उनके अंग ऐसे फटने लगे मानो ज्वर की भीषण ज्वाला में भस्म हो जाएंगे। वे जोरों से सांस लेते हुए बड़ी विकट अचेतन अवस्था में, जैसे कोई मदिरा पीकर लड़खड़ाते गिरते पड़ते आए, उसी प्रकार भूमि पर लड़खड़ाते गिरते आए और घर में आने के साथ ही धरती पर चारों खाने चित्त गिर पड़े। कौन? मेधावी ऋषि। भय से कातर कन्या जब तक पिता को देखने के लिए आए, तब तक कन्या का स्मरण करते ही मेधावी ब्राह्मण मरणासन्न हो गए। भाग्य के प्रसंगवश एक-एक कांपने लगे और कन्यादान के संबंध में जो विवाह महोत्सव की कल्पना की थी वो चूर चूर हो गई। पश्चात पहले के किए हुए गार्हस्थ धर्म के परिश्रम के प्रभाव से सांसारिक वासना का परित्याग कर उन्होंने भगवान पर चित्त लगाया। वे मरणासन्न मेधावी मुनि शीघ्र ही नीलकमल के समान सांवले आकृति वाले त्रिभंग सुंदर स्वरूपधारी श्री हरि भगवान पुरुषोत्तम का मुनि मन इस प्रकार स्मरण करने लगे। सस्मार हरिम तूर्णम मेधावी पुरुषोत्तमम इंदी वरदर श्यामम त्रिभंग ललिता कृतिम। हे रासलीला के अधीश्वर, हे राधा रमन, हे अपने प्रचंड भुज दंड से दूर से ही देवताओं के शत्रुओं का संहार करने वाले, हे ब्रज में अत्यंत भीषण दावानल को पीने वाले, हे नग्न स्नान करने वाले गोप किशोरियों के उतारे हुए वस्त्रों का अपहरण करने वाले, हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे राधेश दामोदर दीननाथ, मैं भवसागर में डूब रहा हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। कौन कह रहे हैं? मेधावी ऋषि। इंद्रियों के अधिपति आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे राधेश दामोदर दीननाथ माम पाए संसार समुद्र मग्नम नमो नमस्ते ऋषिकेश्वराय। इस प्रकार मेधावी मुनि की आर्त ध्वनि दूर से ही सुनकर भगवान के दूत झटपट गोलोक से दौड़ पड़े। देखो कैसा आश्चर्य, मेधावी मुनि इस पृथ्वी पर हैं और गोलोक से दूत दौड़ पड़े, गोलोक से दूत दौड़ पड़े और तत्काल मरे हुए मुनि का हाथ पकड़कर उन्हें भगवान के चरण कमलों में ले आए। कहाँ पर ले आए? गोलोक धाम में ले आए। इति मुनि वचनम निशम्य दूरान झटिति ययुश्च चरा मुकुंद लोकान तदनुमृत मुनि करे गृहीत्वा चरण सरोरोह मयूरीश्वरस्य। इस प्रकार अपने पिता के प्राण निकलते देखकर वो कन्या हाय हाय करके रोने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी। प्राणोत्क्रमणम आलोक हाहेति सा सुधा रुदन अंके कृत्वा पितुर्देहम विललाप सुदुखिता। कुररी पक्षी की भांति बहुत देर तक विलाप करके दारुण दुख से दुखित हो वो विकल हुई और अपने पिता को संबोधित करके कहने लगी मानो वो जीवित हो। कन्या बोली हाय हाय, हे पिताजी, हे करुणा सागर, हे अपनी कन्या के आनंद दाता, आज मुझे किसकी गोद में बैठाकर आप गोलोक धाम को सिधार रहे हो? हे तात, मुझ बिना पिता के कन्या को कौन व्यक्ति अपनाएगा? ना मेरा कोई भाई है, ना बंधु है और ना बेचारी मेरी माता ही रही। हे पिताजी, मेरे भोजन और वस्त्र की कौन श्रुति लेगा? अब वेद ध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगी तो ऐसे शून्य स्थल में मैं कैसे रह सकूंगी? कुररे वचरम सातु विलप्य भृषदुखिताम वाच पितरम बाला जीवंत में वह विहवला। हा हा पिता कृपा सिंधु आत्मजानंददायक कश्यांगे माम निधाया दे गतोसि वैष्णवम पुरम। पितृहीनाम च माम तात को वा संभावेश्यति न भ्राता नैव बंधुश्च न मे माता तपस्विनी। भोजनाच्छादने चिंताम को मे तात करिष्यति कथम तिष्ठाम्यहम शून्ये वेदे ध्वनि विवर्जिते। हे ऋषि प्रवर, आपका आश्रम अब निर्जन वन की भांति हो जाएगा तो अब मैं प्राण दे दूंगी, ऐसे जीवन से क्या लाभ है? हे अपनी बेटी को पिता का प्यार देने वाले, आप विवाह का संपादन किए बिना ही कहाँ चले गए? हे पिताजी, हे तात, हे ऋषि श्रेष्ठ, अब लौट आइए। क्योंकि बड़ी ये कष्ट की बात है कि अभी पुत्र के लिए कोई सहारा नहीं है, ना पिता का सहारा ना पति का सहारा, और पुत्र तो पुत्र की तो बात ही नहीं है ना। तो कन्या को या तो पिता का सहारा चाहिए या पति का सहारा चाहिए या पुत्र का सहारा चाहिए, यहाँ तो कोई सहारा नहीं है। और अमृत के समान मीठी बोली में पुकारिए, आप चुप्पी क्यों साध लिए हैं? हे तात, आपको सोए हुए बहुत देर हो गई, अब उठ जाइए, उठ जाइए। वाणी मद सुधा कल्पाम कदम तो उसने मवस्थिता उत्तिष्ठोत्तिष्ठ हे तात चिरम सुप्तोषी सांप्रतम। ये कहकर आंसू की धारा बहाती हुई वो बालिका बार बार विलाप करती रही और पिता के मरने से अत्यंत पीड़ित हो, दुखित हो, कुर्री पक्षी की भांति गला फाड़ फाड़ कर रोती रही। उस लड़की का रोना सुनकर उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में पूछने लगे, किस तपोवन में आज कितना बिलख बिलख कर कौन रो रहा है? जब क्रम से उन्हें यह निश्चय हो गया कि मेधा ऋषि की कन्या की रुलाई है, तब वे हाय बड़ा गजब हो गया, हाय बड़ा अनर्थ हो गया, ऐसा कहते हुए तेजी से मेधा ऋषि के आश्रम में आए। मेधा ऋषि सुता शब्दम सनेर निश्चित तापसाम संभ्रमा समाजग मोर हाहाकार है समन्विता। उन लोगों ने आकर देखा कि कन्या की गोद में मरे हुए मुनि पड़े हुए हैं। तब उस वन के निवासी सभी मुनि लोग रोने लगे। फिर कन्या की गोद से सब को लेकर शिवालय के पास श्मशान पर गए और लकड़ी की चिता लगाकर अंत्येष्टि विधि से दाह क्रिया संपन्न की। इसके बाद कन्या को आश्वासन देकर सब ऋषि लोग उधर अपने अपने आश्रम को चले गए और इधर कन्या ने भी धैर्य धारण कर संपूर्ण क्रिया के लिए अपने शक्ति के अनुसार धन खर्चा किया। इस प्रकार पिता का एकादशा श्राद्ध आदि करके उसी तपोवन में रहने लगी। जिस प्रकार बछड़े के मर जाने पर गौ बार बार चिल्लाती रहती है, खाती पीती नहीं, आंसू बहाती रहती है, उसी प्रकार पिता के मरण जनित कष्ट रूपी अग्नि में जली हुई कन्या भी रोती धोती चिल्लाती आंसू बहाती दाना पानी छोड़कर बहुत व्यथित रहने लगी। इत्यार्धाध्याय के विधिम प्रणिधाय पित्रम पुत्री निवासम करोच्च तपोवनेस्मिन् साविविधे पितृज दुख दवाग्नि दग्धा रंभे वत्स्य मरणात् सुरभि वबाला। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे कुमारी विलापो नाम अष्टमोध्याय। तो ये कथा भगवान कृष्ण सुना रहे हैं, किसको सुना रहे हैं? और किसके बारे में सुना रहे हैं? द्रौपदी के पिछले जन्म की बात बता रहे हैं। सूत जी बोले, तब विस्मित होकर नारद जी ने मेधावी ऋषि की कन्या के आश्चर्यजनक वृत्तांत के संबंध में प्रश्न किया। नारद जी प्रश्न कर रहे हैं किससे? नारायण ऋषि जी। नारद जी ने कहा, हे मुनिवर, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने तब क्या किया और किस मुनिवर ने उसके साथ विवाह किया, इसे कहिए। श्री नारायण जी कहने लगे, अपने पिता के बारे में उसे रह रहकर याद आती रहती और बार बार शोक करते करते उस आश्रम में रहते उसे कई वर्ष बीत गए। उस सुनसान घर में अकेले रहते उसकी स्थिति वैसी ही थी जैसे मैं झुंड से बिछड़ी हुई हरणी की दशा हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू की झड़ी लगी रहती थी और उसका हृदय कमल सदा झुलसता रहता था। वो बेचारी सदा आहें भरा करती थी और जिस प्रकार पिटारी में सांपिन बंद रहती है उसी प्रकार वो अपने घर में बंदिनी का जीवन व्यतीत करती थी। वो अपने कष्ट के बारे में सदा सोचती रहती थी और समझती थी कि हमारे दुख के पार की कोई अवधि नहीं है। क्या सोचती, मेरे दुख का अंत ही नहीं है कहीं। ऐसी कन्या के पास भावी बल से प्रेरित होकर स्वयं अपनी इच्छा से परम क्रोधी महर्षि दुर्वासा उस वन में पधारे। तामासाद भगवान भविष्यं बलनोदितः यदृच्छया वने तस्मिन् परम परमा कोपनो मुनि। जिनके दर्शन मात्र से इंद्र भी थर थर कांपते हैं ऐसे जटाजूट धारण किए साक्षात शिव के समान दुर्वासा मुनि आए। दुर्वासा मुनि आए कहां पर? उस कन्या के पास आए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, जिनको बाल्यकाल में आपकी माता कुंती ने अत्यंत संतुष्ट किया था, जिनको बाल्यकाल में आपकी माता कुंती ने अत्यंत संतुष्ट किया था और अत्यंत सम्मानित होने पर जिन्होंने आपकी माता कुंती को देवताओं को आकृष्ट करने वाली विद्या प्रदान की थी और जिन्होंने हे राजन अखिल देवताओं से पूजित साक्षात मुझको भी रुक्मिणी के साथ बैलों के स्थान पर रथ में जोता था। भगवान कृष्ण बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, जिन्होंने मतलब दुर्वासा मुनि ने, दुर्वासा मुनि ने बाल्यकाल में आपकी माता कुंती ने जिनको संतुष्ट किया था, दुर्वासा मुनि को संतुष्ट किया था कुंती महारानी, और दुर्वासा मुनि ने कुंती को विद्या दी थी ना, और अत्यंत सम्मान होने पर जिन्होंने आपकी माता कुंती को देवताओं को आकृष्ट करने वाली विद्या प्रदान की थी। किसी भी देवता को बुला सकती हो तुम अपने सामने, ऐसी विद्या प्रदान की थी, और जिन्होंने अखिल देवताओं से पूजित साक्षात मुझको भी रुक्मिणी के साथ बैलों के स्थान पर रथ में जोड़ा। इतने महान हैं दुर्वासा मुनि, मुझको भी जो है रथ में एक रुक्मिणी दो बैल जैसे होते हैं ना रथ में बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी की तरह मुझको और रुक्मिणी को जोत लिया कि चलो अब वो बैठे दुर्वासा मुनि कृष्ण को रुक्मिणी को बैल बना दिया और खुद बैठ गए हैं कि चलाओ मेरी गाड़ी चलाओ, है ना, कृष्ण रुक्मिणी को है। और दुर्वासा को रथ में बैठाकर हम दोनों जब खींचने लगे तब राह चलते चलते बड़ी तेज प्यास के कारण रुक्मिणी के तालू और ओठ चट चटाने लगे। रुक्मिणी का तो परिश्रम का अभ्यास नहीं है तो उनके जो है गला सूख गया, मुंह सूख गया, हाँ बैल की तरह काम करते करते हैं। तब पानी पीने की इच्छा से उसने मुझे इशारा किया, हाँ अपने पति को ही इशारा किया। तब कंधे पर रथ का जुआ रखे हुए चलते चलते ही पैर के अगले भाग से धरती को दबाकर अपनी प्रिया के प्रेम के कारण मैंने भोगवती नदी को उत्पन्न किया। अपना पैर से हाँ पाताल की गंगा भोगवती को निकाला, किसको पिलाने के लिए, रुक्मिणी को। मैं भी बैल बना था और मेरी पत्नी भी बैल बनी थी तो मैंने अपने पैर से जो है निकाल दी और अपनी पत्नी को पिलाया, पानी पिलाया, रुक्मिणी को पानी पिलाया। तब वो नदी ऊपर की ओर बहने लगी उतने ही जल से, हे महाराज युधिष्ठिर, मैंने रुक्मिणी की उत्कृष्ट प्रयास को बुझाया। ये देखकर उसी क्षण अग्नि की भांति दुर्वासा मुनि क्रोध के मारे आग उबला हो गए कि मेरी आज्ञा के बिना कैसे पानी पिया। और प्रलयकालीन अग्नि के समान उठकर कुपित हुए मुनि ने साप दिया। आहा बड़ा आश्चर्य है कि हे श्री कृष्ण, रुक्मिणी तुम्हें बड़ी प्यारी है जिससे तुम मेरा निरादर कर प्रिया के प्रेम से आकृष्ट हो अपना महत्व दिखाने के लिए उसे पानी पिलाया। इतनी हिम्मत तुम्हारी है, इसलिए तुम दोनों का परस्पर वियोग होगा, तुम दोनों का परस्पर वियोग होगा। हे दुष्ट, ऐसा जिन्होंने साथ दिया था वही मुनिराज साक्षात शिव जी के अंश से उत्पन्न दूसरे काल के समान महर्षि अत्रि के भीषण तप रूपी कल्प वृक्ष के महान दिव्य फल हैं। अत्रि के पुत्र है ना दुर्वासा मणि, पतिव्रत कुल चूड़ामणि अनुसूया के गर्भ से उत्पन्न अति मेधावी दुर्वासा नाम के महर्षि मानो तपस्या नहीं मूर्तिमान अवतार लिया हो। असंख्य तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषित सिर वाले दुर्वासा मुनि को आते हुए देखकर शोक सागर से निकलकर खड़ी हो धैर्य पूर्वक मुनिराज के चरणों की वंदना की। किसने चरणों की वंदना की? हाँ, ये कन्या मेधावी की कन्या, इसका नाम नहीं बताया गया ना, कोई नाम नहीं बताया गया। प्रणाम करने के बाद जैसे महर्षि वाल्मीकि जी को जानकी जी अपने आश्रम में लाई थी, वैसे वो भी दुर्वासा मुनि को अपने आश्रम में ले आई। अर्घ्य पाद्य विविध प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से स्वागत करने की अनुमति प्राप्त कर आदर के साथ उनकी पूजा की। फिर हे महाराज युधिष्ठिर, विनय पूर्वक वो मुनि कन्या बोली। कन्या ने कहा, हे महाभाग्यशाली, हे महर्षि अत्रि के पुत्र, आपको नमस्कार है। हे साधु सत्तम, मुझे भागिन के आश्रम में आज आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? हे ऋषिवर, आपके समागमन से आज मेरा भाग्य उदय हुआ अथवा मेरे पिता के पुण्य से प्रेरित हो। हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे सांत्वना प्रदान करने के लिए आप आए हैं। आप जैसे महात्माओं के चरण धूलि ही तीर्थ स्वरूप है, उस धूलि को स्पर्श कर आज मेरा जीवन और व्रत दोनों सफल हो गया। आप जैसे महामना का जो मुझे दर्शन प्राप्त हुआ, उससे आज मेरा पुण्य सफल हुआ और मेरा इस संसार में जन्म लेना सार्थक हो गया। किसने कहा? मुनि कन्या ने कहा दुर्वासा मुनि से। इतना कहकर वो कन्या उनके सामने चुपचाप खड़ी रह गई। तब दुर्वासा मुनि मुस्काते हुए बोले, दुर्वासा मुनि ने कहा, धन्य है ब्राह्मण पुत्री, धन्य है, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया। मेधा ऋषि की तपस्या का फल है जो तुम्हारी ऐसी कन्या का जन्म हुआ, तुम्हारी ऐसी कन्या का जन्म हुआ। तुम्हारी धर्म परायणता जानकर कैलाश से मैं यहाँ आया और तुम्हारे आश्रम में पहुंचकर तुम्हारे द्वारा पूजित हुआ। साधु साधु दुज सुते कुलम्बुद्रितम पितुः मेधा ऋषि सुतपसा फल में तादृशी सुता कैलासाधाम आगच्छन् ज्ञात्वा ते धर्मशीलतां तदाश्रमम् अनुप्राप्त त्वया सम्पूजितोऽस्म्यहम्। और हे सुंदरी, अब नारायण देव सनातन मुनीश्वर का दर्शन करने के लिए बदरिकाश्रम को तुरंत जा रहा हूँ। मैं आया कहाँ से? कैलाश से आया, और कहाँ जा रहा हूँ? बदरिकाश्रम जा रहा हूँ। वहाँ वे लोक कल्याण की भाव कामना से एकाग्र चित्त हो अत्यंत भीषण तपस्या कर रहे हैं। कन्या ने कहा, हे ऋषि, आपका दर्शन होते ही मेरे शोक का सागर तो सूख गया, अब आपके बाद तुम्हारा भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है, ऐसी आपने सांत्वना भी प्रदान की। परंतु हे मुनिराज, मेरे हृदय में जो भीषण वन अग्नि सुलग रही है, उसे क्या आप नहीं जानते हैं? हे दयानिधान, हे कल्याण करने वाले, उस दुख अग्नि को बुझाने का कोई उपाय बताइए। मैंने बहुत अच्छी तरह सोच विचार कर देख लिया है कि भविष्य में मुझे कहीं से भी हर्ष नहीं मिलने वाला है। ना मेरी माता ही है, ना पिता है, और ना कोई भाई है जो मुझे धैर्य प्रदान करे। अतः कष्ट सागर से पीड़ित हो मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? न माता न पिता भ्राता यो मैं धैर्यं प्रयच्छति कथंकारम अहम जीवे दुख सागर पीड़िता। जिस दिशा की ओर मेरी दृष्टि जाती है, वहाँ वहाँ सोना ही दिखलाई पड़ता है। इसलिए हे तपस्वी कुल शिरोमणि, शीघ्र ही मेरे दुख के निवारण का कोई उपाय कीजिए। कोई भी व्यक्ति मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। यदि समय पर विवाह नहीं हुआ तो मैं अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाऊंगी, इसका मुझे बड़ा डर हो रहा है। इसी कारण से ना तो रात में नींद आती है और ना खाने पीने की इच्छा ही होती है। हे ब्रह्मर्षि, मैं मर जाऊं, बस यही बात रह रहकर मन में आ रही है और यही मेरा निश्चय भी है। ये कहकर टप टप आंसू गिराती हुई वो कन्या दुर्वासा मुनि के सामने चुपचाप खड़ी रह गई। तब दुर्वासा मुनि उस कन्या के कष्ट को दूर करने के लिए उपाय सोचने लगे। इतने कथा कहने के बाद महर्षि नारायण बोले, इस प्रकार ऋषि कन्या की बात सुनकर उसका अभिप्राय समझकर अतीव क्रोध करने वाले मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कल्याण विचार कर अतिशय दया दृष्टि से उसकी ओर देखकर कुछ सारभूत उपाय बतलाया।
वचो निशम्य भलतमा मुनिरान विचार छंदः अतिशय कृपया विलोक्य बालां किमपि हितं निजगाद सारभूतम्। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये दुर्वास तपोवन गमनम नाम नवमोध्याय।
तो नारद जी ने पूछा, हे तपस्वी श्रेष्ठ, नारद जी पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं? नारायण से पूछ रहे हैं, हे तपस्वी श्रेष्ठ, अत्यंत क्रोधी महर्षि दुर्वासा ने विचार करके उस कन्या को क्या सुझाव दिया, सो आप मुझे बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, नारद जी का प्रश्न सुनकर समस्त समाज के कल्याणकारी दुर्वासा मुनि के रहस्यपूर्ण वचनों का बद्री नारायण ने उद्घाटन किया। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, मेधावी ऋषि की कुमारी कन्या के क्लेश को दूर करने के लिए दया सागर दुर्वासा मुनि ने जो उपाय बतलाया उससे हम कहते हैं, आप सुनिए। श्रृण नारद वक्षेयम् यदुक्तं मुनिनां तदां मेधावी तनया दुःखम् अपने तुम कृपालुनां। दुर्वासा ने कहा, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त एक महान उपाय है जिसे मैं तुझसे कह रहा हूँ। सुनो, ये उपाय किसी को बतलाने योग्य नहीं है, परंतु तुम्हारे लिए तो मैंने इस पर भली भांति विचार कर लिया है। विस्तार पूर्वक ना कहकर मैं तुमसे संक्षेप ही मैं बतला रहा हूँ। हे भाग्यशालिनी, इस महीने से तीसरा महीना जो आएगा वो पुरुषोत्तम मास होगा। उस मास में तीर्थ में स्नान कर लेने से मनुष्य भ्रूण हत्या के पाप से मुक्त हो जाते हैं। हे देवी, कार्तिक आदि 12 महीने इसकी तुलना नहीं कर सकते। जितने महीने, जितने पक्ष और जितने पर्व दिवस हैं, वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है, सब मिल करके भी। आप समझ रहे हैं, जितने महीने हैं, पक्ष हैं, पर्व हैं, सब मिल करके भी 16वीं कला के बराबर नहीं, 6% भी नहीं है। किसके? पुरुषोत्तम मास के। वेदोक्त जितने साधन और जितने परम पद प्राप्ति के साधन है, वे भी पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। सर्वे मासा तथा पक्षा परमान्यन्यानि यानि च पुरुषोत्तम मासस्य कलाम नार्हन्ति षोडशी साधनानि समस्तानि निगमोक्तानि यानि च मासस्य तस्य नार्हन्ति कलामपि च षोडशी। बारह हजार वर्ष तक निरंतर गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है, और सिंहस्थ गुरु में गोदावरी नदी में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल पुरुषोत्तम मास में जहाँ कहीं भी एक बार भली भांति स्नान करने लेने से प्राप्त होता है, कितना बड़ा महात्मा है। कहीं भी स्नान कर लो अच्छी प्रकार से, यहाँ 12,000 साल तक गंगा में स्नान करना, और पुरुषोत्तम मास में कहीं भी स्नान कर लो, लेकिन अच्छी प्रकार से स्नान करो, अच्छी भावना में स्नान करो, है ना। 12,000 साल तक गंगा में स्नान करने का फल पुरुषोत्तम मास में। द्वादशाब्द सहस्राणि गंगा स्नानेन यत्फलम गोदावरी सकृत स्नानाद यत्फलम सिंहगे गुरौ तदेव फलम आप्नोति मासे वै पुरुषोत्तमे सकृत सुस्नान मात्रेण यत्र कुत्रापि सुंदरी। ये मास श्री कृष्ण जी का अत्यंत प्यारा है और नाम से भी भगवान को स्मरण कराता है, अपने नाम से भी भगवान का स्मरण कराता है।
हे भामी, इस मास में भगवान पुरुषोत्तम की सेवा आराधना व्रत करने से सब कामनाएं पूरी होती हैं। श्री कृष्ण वल्लभ हो मासो नाम नाचा पुरुषोत्तम तस्मिन संसेविते बाले सर्वम भवति वांछितम। इसलिए तुम पुरुषोत्तम मास की आराधना शीघ्र आरंभ कर दो। भगवान पुरुषोत्तम की भांति प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की पूजा आराधना व्रत क्रियाएं की हैं और करता हूँ। कौन कह रहे हैं? दुर्वासा मुनि कह रहे हैं। एक समय की बात है कि कुपित होकर मैंने महाराज अम्बरीश को भस्म करने के लिए कृत्या राक्षसी भेजी थी। उस समय हे देवी, भगवान हरि ने सुंदर अधर युक्त प्रज्वलित सुदर्शन चक्र मुझे ही भस्म करने के लिए मेरे पीछे भेजा था। तब मेरे पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से वो सुदर्शन चक्र लौट गया। सुदर्शन चक्र में तीनों लोगों को भस्म करने की शक्ति है। हे सुंदरी, जब उससे मेरा बाल बांका ना हुआ तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ सुदर्शन चक्र का, है ना। श्रीमद् भागवत में तो वर्णन आता है कि सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे लग गया और दुर्वासा मुनि को फिर भगवान ने कहा कि तुम अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगो, तब सुदर्शन चक्र लौटा। और यहाँ पर दुर्वासा मुनि कहे कि सुदर्शन चक्र लौट गया और मेरा मतलब अनिष्ट नहीं कर सका। तो दोनों बातों को हमें समझना पड़ेगा ना। अब दोनों बातें ऐसे समझ आती हैं कि सुदर्शन चक्र पीछे तो पड़ा था दुर्वासा मुनि के, लेकिन भस्म फिर भी नहीं किया, तो ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है। चक्र है किसी के पीछे पड़ जाए और उसका फिर भी भयभीत तो दुर्वासा मुनि हो रहे हैं, लेकिन तो भी चक्र ने उनको नहीं जलाया, नष्ट नहीं किया, ये भी तो एक बड़ी बात है। तो ये पुरुषोत्तम मास का तो प्रभाव है ना कि नहीं? ये भी तो पुरुषोत्तम मास का महात्म्य है कि पुरुषोत्तम मास के महात्म से चक्र ने उनको जलाया नहीं, है ना। लेकिन जलन महसूस कर रहे थे वो अलग बात है, उनको अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगनी पड़ी। लेकिन चक्र कोई इतनी देर रोकता है क्या किसी के, किसी को मारना हो तो इतनी देर तक रुकेगा क्या चक्र, है ना। लेकिन बहुत विशेष बात है तो पुरुषोत्तम मास का तो इसमें बहुत बड़ा महात्म है, है ना। तो दुर्वासा मुनि कह रहे हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है कि चक्र ने मुझे नहीं जलाया। इसलिए हे भाग्यशालिनी, तुम श्रीमान पुरुषोत्तम मास का व्रत पूजन आराधन करो। इस प्रकार ऋषि कन्या से अनुरोध करके मुनिराज दुर्वासा ने अपनी वार्ता की समाप्ति कर दी। जल्दी में थे, बोले मुझे जाना है, है ना। इतनी कथा कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहने लगे कि दुर्वासा ऋषि की बात सुनकर हे राजन, होनहार के बस और कुछ ईर्ष्या बस वो कन्या बोली, उसकी बुद्धि तो मारी गई थी। अपराध कर दिया उसने। कन्या बोली, मन में तो कोप के कारण वो उबाल खा रही थी, फिर भी दुर्वासा मुनि से कहने लगी। मुनि कन्या बोली, हे ब्राह्मण, हे ऋषिराज, आपने जो कहा वो मुझे रुचिकर नहीं प्रतीत होता है। क्या माघ आदि मास निसार हो गए? क्या कार्तिक मास का महात्म्य कम हो गया? आप ऐसा क्यों कहते हैं, इसे समझा कर कहिए। वैशाख मास में स्नान दान व्रत पूजन करने से क्या मनोवांछित फल नहीं मिलता है? सदाशिव से लेकर जितने देवता लोग हैं, क्या वे आराधना पूजना करने से फल नहीं देते हैं? ये क्या अपराध किया उसने, मुनि कन्या ने अपराध कर दिया, समझे कि इतने देवता हैं तो इन देवताओं की आराधना छोड़ दो, है ना, और इतने महीने हैं इनका भी नियम छोड़ दो, पुरुषोत्तम मास क्यों करें। इस तरह से उसने बहस की। अथवा भूतल पर सूर्य देवता हैं जिनका प्रत्यक्ष दर्शन होता है, क्या वे कामना नहीं पूर्ण करते? जगत जननी भगवती देवी भवानी क्या मनोरथ पूरा नहीं करती? गणेश जी की उपासना करने से क्या वे कामना की पूर्ति नहीं करते? और शिव जी आदि देवताओं का परित्याग करके पुरुषोत्तम मास की आप प्रशंसा करते हुए आपको लज्जा नहीं आ रही है? कितना गलत बोल दिया दुर्वासा मुनि को, कितना गलत बोल दिया। आपको शर्म नहीं आती पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते? अरे ये तो बड़ा मलिन मास है, समस्त शुभ कर्मों में निंदित है। हे मुनि, इसमें तो सूर्य की संक्रांति भी नहीं होती, तो फिर आप इसे श्रेष्ठ कैसे सिद्ध करते हैं? मैं मानती हूँ कि सब दुखों को काटने वाले श्री हरि भगवान परम श्रेष्ठ हैं। हे भूदेव, दिन रात भगवान की उपासना करते हुए जानकी रमन भगवान श्री राम और पार्वती वल्लभ शंकर के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं देखती जो इनसे भी बढ़कर हो और जो मेरे क्लेश का विनाश कर सके। हे ब्राह्मण देवता, हे मुनीश्वर, फिर इन सब देवताओं को छोड़कर मैं कैसे इस मल मास की स्तुति पूजा आराधना करूं? जब उस ब्राह्मण कुमारी ने इस प्रकार की बात की तो दुर्वासा मुनि कुपित हो उठे, उनका शरीर प्रज्वलित हो उठा, उनकी आंखें क्रोध की मारे लाल हो उठी। इतना होने पर भी दयालु होकर अपनी मित्र कन्या को शाप नहीं दिया और मन ही मन सोचने लगे कि ये मूर्ख बालिका है, इसकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है, अपने हित अनहित को नहीं पहचानती है। पुरुषोत्तम मास के महात्म का पता तो बड़े बड़े विद्वानों को भी नहीं है, फिर थोड़ी बुद्धि वाले मनुष्यों और विशेष करके कुमारी बालिकाओं को कहाँ से हो सकता है? ये दुर्वासा मुनि अपने मन में ही सोच रहे हैं। गुस्सा तो बहुत आया ये मन में, क्योंकि मित्र की पुत्री है ना, बालिका है, फिर इसके माता पिता भी तो नहीं है, अनाथ बालिका तो कष्ट रूपी अग्नि में भून दी गई है, फिर मेरे अति भीषण साप को कैसे सहन करेगी? इस प्रकार सोचकर दया आ जाने के कारण मन में उबाल खाए हुए क्रोध को दबाकर शांत हो अति विकल हुई कन्या से मुनि कहने लगे। दुर्वासा मुनि बोले, अरे अबोध बालिका, मेरे मित्र की कन्या, हाय, मैं तेरे ऊपर क्रोध नहीं कर रहा हूँ। अरे अभागिन, तेरे मन में जैसा आए वैसा कर। अरे बेटी, तेरा कुछ भविष्य बता रहा हूँ, उसे सुन ले। तूने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया, उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, चाहे इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम बद्रीनाथ धाम में जा रहा हूँ। अरे भाई बहेवला, तेरे पिता मेरे मित्र थे, इसलिए मैंने तुझे शाप नहीं दिया। पहली बार है दुर्वासा मुनि ने किसी को शाप नहीं दिया। तुम अल्लाह स्वभाव के कारण अपना हित अनहित भला बुरा नहीं पहचान रही हो। यहाँ मेरा बहुत समय बीत गया, शुभ अशुभ होनहार को कोई मिटा नहीं सकता। अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। बोला, मैं जा रहा हूँ। श्री कृष्ण जी बोले कि इतना कहकर तपस्वी दुर्वासा तुरंत चल दिए। पुरुषोत्तम मास का अपमान करने के कारण उसी क्षण उस कन्या का मुंह स्याह हो गया। स्याह मतलब काला हो गया, मुंह काला हो गया, जबकि बहुत सुंदर थी, मुंह काला हो गया। तब चिरकाल तक मन में ये विचार किया कि तत्काल फल को देने वाले पार्वती पति शिव जी की तपस्या द्वारा आराधना करूंगी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, मेधावी ऋषि की कन्या ने अपने मन में ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में रहकर शंकर जी की तपस्या करने का संकल्प किया। सूजी कहते हैं, ये कथा सूजी भी सुना रहे हैं। सूजी कहने, दुर्वासा मुनि के प्रचंड आग्रह को ठुकराकर समस्त फलों के दाता लक्ष्मी नारायण की उपासना का परित्याग करके सावित्री पति ब्रह्मा की आराधना छोड़कर ऋषि कन्या अपने आश्रम में रहकर अंधकासुर का वध करने वाले शंकर जी की पूजा करने के लिए तत्पर हो गई। इति श्री बहन आदि पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य कुमारी शिवाराधनो योग को नाम दसवां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, समस्त मुनियों के लिए भी तपस्या करना बड़ा दुष्कर कार्य है, किंतु उस ऋषि कुमारी ने ऐसा कठोर कार्य कैसे किया, आप इसे बतलाइए। श्री नारायण ने कहा, तब कल्याणी मुनि पुत्री ने सनातन शांत पंचमुख शिव जी का ध्यान करके अत्यंत भीषण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने हुए नंदी और भृंगी गणों से सेवित 24 तत्वों से समन्वित देवाधिदेव आठों महासिद्धियों एवं प्रकृति तथा पुरुष से युक्त अर्धचंद्र से शोभायमान भाल वाले जटाजोट से विराजमान मस्तक वाले ऐसे शिव को संतुष्ट करने के लिए उस बाला ने भीषण तप प्रारंभ किया। ग्रीष्म ऋतु में वो पंचाग्नि तपती थी, हेमंत शिष्य ऋतु में ठंडे पानी के अंदर मुंह खोलकर तप करती थी। उस समय ऐसा प्रतीत होता मानो जल में कमलनी खिली हो, सिर के नीचे बिखरी हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वो जल में ऐसी शोभा पाती मानो सेवार की लताएं फैली हुई हों। शीत के कारण ब्रह्मरंध्र से निकली हुई धुएं की पंक्ति से ऐसी प्रतीत होती थी मानो कमल के मकरंद का पान करके भौरों की पंक्तियां निकलकर जा रही हूँ। वर्षा ऋतु में चबूतरे पर कुशा बिछाकर खुले आकाश के नीचे बिना किसी प्रकार की छाया के रहकर तप करती वो कोमलांगी प्रातः और सायंकाल धुआं पीकर रहती। उस कन्या के इस प्रकार उग्र तप को सुनकर देवराज इंद्र को बड़ी चिंता समा गई। सब देवताओं से दुर्धर्षा और बड़े बड़े महर्षियों से इस प्रहनिया ऋषि कुमारी को तप करते हुए हे राजन 9000 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष बीत गए? 9000। जबकि एक महीना करना था कुछ पुरुषोत्तम मास का, तो छोड़ करके अब शिव जी की आराधना में 9000 साल बिताएंगे। उस कन्या की तपस्या से गिरिजा शंकर प्रसन्न होकर उसे इंद्रियों से परे अपने स्वरूप का दर्शन देते हैं। उनका दर्शन पाकर जैसे शरीर में प्राण लौट आए वैसे एकाएक खड़ी हो गई और तपस्या करने से दुर्बल होने पर भी उस समय हृष्ट पुष्ट हो गई। हवा और धूप से बहुत पीड़ित होने पर भी उस शिव जी को बड़ी प्रिय लगी। तब उस बाला ने सिर झुकाकर गिरिजा रमण को प्रणाम किया। उन विश्ववंद विश्वनाथ जी का मानसिक उपचारों से पूजन करके अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ उन शिव की स्तुति करने लगी। कन्या बोली हे शैल पुत्री के प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभु, हे तमा, हे सोम सूर्य अग्नि रूप दिव्य नेत्र धारण करने वाले, हे मेरे आधार, हे घोर संसार सागर में हे मुंड अस्थि की माला पहनने वाले, आपको प्रणाम है। विविध तापों से जिनके अंग प्रत्यंग में पीड़ा हो रही हो, जो घोर संसार सागर में डूब रहे हों, दुराचारी रूपी सांपों से जो पीड़ित हो रहे हों और काल के भयंकर दाणों से डसे हुए प्राणी यदि आपकी शरण का आश्रय लेते हैं तो उनकी मुक्ति हो जाती है। हे प्रभु, आपने अपने परम भक्त बाणासुर को अपना लिया और महाराज अलर्क की मरी हुई रानी को प्राण दान दे दिया। हे दयानिधान, हे भूतेश्वर, हे चंडीश्वर, हे भव, हे मृत्युंजय, हे प्राणों के धीश्वर, हे प्रजाति, हे प्रजापति दक्ष के यज्ञ के विध्वंस करता, हे अखिल शत्रु विनाशक, हे अपने भक्तों के जन्म मरण के बंधन को ध्वंस करने वाले, आवागमन को मिटाने वाले, सृष्टि के आदि करता, हे प्राणों के अधिपति, हे पाप विनाशक, आप अपनी आराधना करने वालों की रक्षा कीजिए, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, वो महाभाग्यशालिनी तपस्विनी मेधावी ऋषि की पुत्री इस प्रकार मनसा और वाचा से शंकर जी की स्तुति करके मौन हो गई। श्री कृष्ण जी बोले कि ऋषि कन्या के अत्यंत उग्र तप को देखकर और उसके द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर शिव जी का मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने कन्या से कहा, शिव जी बोले हे महाभाग्यशालिनी, हे तपस्विनी, अब तुम खेद मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो आकांक्षा हो वो वरदान मांग लो। ये सुनकर वो कुमारी आनंद के सागर में निमग्न हो गई और हे युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव से वो कहने लगी। ऋषि कन्या ने कहा, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे अवढ़दानी, मेरी कामना पूरी करने में रंच मात्र भी विलम्ब ना करें। हे महादेव, पति दीजिए, पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति की कामना है, पति दीजिए। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरी बात अपने हृदय में मैंने नहीं सोची है। पतिम देही पतिम मह्यम, पतिम पतिम अहम वृणे, पतिम देही महादेव नान्यन में चिंतितम हृदय। तो करपदीश्वर से ये कहकर वो ऋषि कन्या चुप हो गई। तब ये सुनकर महादेव जी मुनि कन्या से बोले। शिव जी ने कहा, हे मुनि कन्या, तुमने जैसा अपने मुंह से कहा है वैसा ही होगा, अतः तुमने 5 बार पति पति कहकर वर मांगा है, इसलिए हे रमणी, तुम्हारे 5 पति होंगे। वे सभी सूरवीर समस्त धर्म वेत्ता सरल सत्य पराक्रमी यज्ञ करने वाले अपने गुणों के से विख्यात सत्य प्रतिज्ञ इंद्रिय निग्रही तुम्हारे रुख के अनुसार कार्य करने वाले सभी राज कुल उत्पन्न और गुणशाली होंगे। कृष्ण जी ने कहा कि शिव जी के इस कड़वे वचन को सुनकर बोलने में चतुर कन्या ने सिर झुकाकर कहा। मुनि कन्या बोली, हे गिरिजा के पति सदाशिव, ऐसा वर देकर संसार में मेरा तमाशा ना बनाइए। क्या ना बनाइए? तमाशा ना बनाइए। क्योंकि एक नारी का एक ही भर्ता होता है, ऐसा तो कहीं ना देखा गया ना सुना गया कि नारी तो एक हो और उसके भर्ता पांच हो। हाँ ये संभव है कि एक पुरुष की पांच पत्नियां हो सकती हैं। हे शंभु, हे कृपा निधान, आपकी आराधिका होकर भी मैं पांच भर्ता वाली कैसे हो सकती हूँ? मेरे संबंध में इस प्रकार का वचन कहना आपको शोभा नहीं देता। आपकी पुजारिन होने के कारण जो मुझे लज्जा हो रही है वो आप अपने पर ही समझिए। कन्या की ये बात सुनकर शिव जी उससे फिर बोले। शिव जी ने कहा, हे कन्या, इस जन्म में तो तुम्हें पति सुख नहीं मिलेगा, परंतु दूसरे जन्म में जब तुम अपनी तपस्या के प्रभाव से अयोनिजा के रूप में यज्ञ कुंड से उत्पन्न होगी, तब पति जन्म सुख को प्राप्त कर अनंतर परम पद की अधिकारिणी होगी। क्योंकि पूर्व जन्म में मेरे प्रिय स्वरूप दुर्वासा का तुमने अपमान किया है। क्या सुना? दुर्वासा का अपमान किया है। हे ललना, यदि दुर्वासा कुपित हो जाए तो तीनों भुवनों को भस्म कर सकते हैं, परंतु तुमने तो अहंकार के वशीभूत होकर ब्रह्म तेज का मर्दन कर दिया, जिस अधिमास को भगवान श्री कृष्ण ने अपना निजी ऐश्वर्य प्रदान कर दिया, उस भगवान के परम प्रिय पुरुषोत्तम मास का तुमने व्रत नियम नहीं किया। देखो शिव जी भी जो है उसी की निंदा कर रहे हैं कि तुमने जो है कितनी बड़ी गलती की। मैं ब्रह्मा से लेकर समस्त देवतागण और नारद से लेकर जितने तपस्वी हैं वे जिनके आदेश का पालन करते हैं, हे मुनि कन्या, उनके आदेश का कौन उल्लंघन कर सकता है? अरे अबोध बाला, दुर्वासा की आज्ञा से भी तुमने उस विश्वबंध पुरुषोत्तम मास की आराधना नहीं की, अतः हे ब्राह्मण कुमारी, तुम्हारे पांच पति होंगे ही। नान्यथा भावी तद बाले पुरुषोत्तम खंडनात्, अन्यथा कुछ नहीं होगा क्योंकि तुमने पुरुषोत्तम का अपमान किया। जो वे अन्यति तम मासम से आती घोर रौरवम, तो जो व्यक्ति उस तम उस मास का जो निंदा करते हैं वे घोर रौरव नरक के अधिकारी होंगे। पुरुषोत्तम मास का अपमान करने वाले को विपरीत फल होता है, ये बात कभी भी अन्यथा नहीं हो सकती। अब तुमने मेरी आराधना के लिए तो अभी उल्टा फल मिला, तो शिव जी कह रहे हैं मेरी आराधना से भी तुमने उल्टा ही फल पाया। पुरुषोत्तम मास की आराधना करने वाले पुत्र पौत्र और धन से संपन्न होते हैं, वे इस लोक और परलोक में सिद्धि को प्राप्त किए हैं, भविष्य में सिद्धि प्राप्त करेंगे और वर्तमान काल में भी सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। हम सभी देवता लोग भी पुरुषोत्तम मास की आराधना करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रत पूजा नियम आदि का आचरण करने से पुरुषोत्तम भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, उस आराधनीय मास की हे सुंदरी हम लोग क्यों ना आराधना करें? यस्मिन संसेविते शीघ्रम प्रियते पुरुषोत्तम सेवनीयम कथम सासम सांसम नभिजामा सुमध्यमे। कहो तो अत्यंत उच्च महान पुरुषों की वाणी कैसे मिथ्या हो सकती है? सत असत वाद की विवेचना करने वाले मुनियों की वाणी अनुकरणीय है। इतना कहते कहते नीलकंठ शिव शीघ्र ही अंतर्धान हो गए और वो मुनि कन्या चकित हो इधर उधर देखने लगी, जैसे अपने झुंड से बिछुड़ी हरिणी चकित हो इधर उधर देखती रह जाती है। श्रोत जी बोले, हे मुनिवरो, द्वितीया की चंद्रलेखा से युक्त भाल वाले सदा शिव जी जब उत्तर दिशा की ओर चले गए, तब वृत्रासुर को मारकर जैसे देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या के संबंध में चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनि कन्या को भी चिंता समा गई। तो चिंता समा गई। तो यहाँ पर अभी मैं कथा को विश्राम दे रहा हूँ, यहाँ आगे चल करके फिर ये बताया जाता है कि वो पुरुषोत्तम मास का अपमान करने के कारण ही द्रौपदी का अपमान हुआ है ना, द्रौपदी का अपमान हुआ और दुशासन ने अपमान किया, लेकिन फिर कृष्ण का जो है उसने स्मरण किया तो भगवान कृष्ण ने रक्षा की, उसके चरित्र की रक्षा की द्रौपदी के, लेकिन इसमें मतलब शिक्षा मिलती है इससे। ठीक है, अब एक आध प्रश्न कर सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं हमारे पास, किसी का एक आध प्रश्न हो या मैं प्रश्न करूँ? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। अच्छा, तो मेरा प्रश्न ये है कि द्रौपदी ने दुर्वासा मुनि से बहस की थी, है ना। दुर्वासा मुनि ने कहा था कि तुम पुरुषोत्तम मास का व्रत करो, है ना। तो उसने जो है बहस की, तो उसने कहा कि आप जो है इतने देवताओं की पूजा को छोड़ करके पुरुषोत्तम मास की पूजा क्यों बता रहे हैं, इतने महीने हैं, है ना, इतने पवित्र महीने हैं, पुरुषोत्तम मास का महात्म्य इससे ऊँचा कैसे बता रहे हैं। उसने बहस की थी, है ना। तो दुर्वासा मुनि ने साफ दिया, दुर्वासा मुनि तो साफ देते हैं, दुर्वासा मुनि को क्रोध भी आया, हैं, लेकिन ये पहली बार था जो उन्होंने किसी को साफ ना दिया, हैं, क्या कारण। हाँ आप बताएं। हाँ एक एक कारण तो यह था कि मित्र की पुत्री है, एक कारण यह है कि मित्र की पुत्री है, दूसरा कारण है पुरुषोत्तम मास नहीं चल रहा था, पुरुषोत्तम मास तो 3 महीने के बाद आने वाला था, बालिका है, अबोध बालिका है, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी पता नहीं होता है, तो ये जो है अबोध बालिका है, दूसरा कारण ये भी था अबोध बालिका है। हाँ हाँ भाई बहन भी नहीं है, माता पिता भी नहीं है, तीसरा कारण, 3 कारण हो गए, 3 कारणों से उसको साफ नहीं दिया, है ना। फिर भी कहा, फिर भी बताया उसको कि मैं तो साफ नहीं दे रहा हूँ तुझे, मैं तुझे अपनी तरफ से दंड नहीं दे रहा हूँ, लेकिन क्या होगा, दंड मिलेगा, दंड तो मिलेगा, है ना। तो ये कहा कि दंड मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य महामहोत्सव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री गौरकाई की जय।